छूना मत मुझे, वरना मार दूंगी तुम्हें। दूर हटो मुझसे।
आरवी को छटपटाते देखकर विहान के दिल को सुकून मिल रहा था। उसने उसकी धमकी के बावजूद अपनी उंगलियों से उसके चेहरे पर आए बालों को पीछे करने के बहाने उसके चेहरे को अपनी उंगलियों के पोरों से छुआ। आरवी की आंखों में नमी तैर गई। विहान ने उसके गालों पर अपनी उंगलियां चलाते हुए कहा, ऐसे कैसे दूर चला जाऊं स्वीटहार्ट? आज तो पुराने सारे हिसाब बराबर करने का वक्त आया है। जितना तुमने मुझे तरसाया है, आज उससे कहीं गुना ज्यादा तुम तड़पोगी। आरवी उसके हाथ को अपने चेहरे पर से हटाने को छटपटाने लगी। विहान ने उसके गालों को पकड़कर दबा दिया और शैतानी मुस्कान लबों पर सजाते हुए बोला, बिल्कुल ऐसे ही छटपटाओगी, दूर जाना चाहोगी मुझसे, पर आज मैं तुम्हें खुद से दूर जाने नहीं दूंगा। पहले बंद कमरे में ऐतराज जताया था ना, अब आज यहां सबके सामने तुम्हारी इज्जत उतरेगी और तुम आंसू बहाने के अलावा कुछ नहीं कर सकोगी। हर बार तुम्हारा पति आता है ना तुम्हें बचाने, पर अफसोस कि आज वो खुद को बचाने के काबिल नहीं तो तुम्हें क्या बताएगा। आज तो उसके सामने तुझे अपना बनाऊंगा और ना वो कुछ कर सकेगा और ना ही तू। पर ऐसे तुझे बांधकर मजा नहीं आएगा। जब तक तू भागेगी नहीं, चीखेगी चिल्लाएगी नहीं, तब तक जबरदस्ती करने में मजा नहीं आएगा। विहान ने अजीब तरह से आरवी को देखा तो वो डर के मारे खुद में सिमटने लगी। उसकी बेबसी भरी नम आंखें सामने बंधे शान की तरफ चली गईं। विहान ने पहले उसके पांव खोले, फिर उसने जैसे ही आगे बढ़कर उसके हाथ को खोला, आरवी ने उसके कंधों पर हाथ रखकर उसको खुद से दूर धक्का दे दिया और तुरंत उठकर दूसरी तरफ खड़ी हो गई। उसके अचानक धक्का देने की वजह से विहान जमीन पर जा गिरा, कुर्सी भी पीछे को लुढ़क गई। आरवी का सर हल्का सा चकरा गया और आंखें बंद हो गईं, पर जल्दी ही उसने खुद को संभाल लिया। इस दौरान विहान भी उठ खड़ा हुआ और गुस्से में उसकी तरफ बढ़ते हुए बोला, मैं तुझे वार्न कर रहा हूं, अगर आराम से मेरी बात मानेगी तो तकलीफ कम होगी, वरना इतना दर्द दूंगा कि तेरे साथ साथ ये तीनों भी तड़पेंगे और तेरी हालत देखकर खुद को खत्म कर लेंगे। आरवी ने वहां बंधे अमरजीत जी, सुभाष जी और शान को देखा। उसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर यहां हो क्या रहा है, पर विहान को अपने तरफ बढ़ते देखकर उसने तुरंत कदम पीछे हटाते हुए कहा, मेरे करीब मत आना, मैं बता रही हूं, मैं मार दूंगी तुम्हें। पहले खुद को तो बचा लो स्वीटहार्ट, फिर मुझे मारने की अपनी ख्वाहिश भी पूरी कर लेना, विहान ने तिरछी मुस्कान के साथ उसे देखा। जब तक आरवी उसकी बात का मतलब समझ पाती, पीछे से एक आदमी ने उसको दबोच लिया। आरवी डर से कांप उठी। उसने आसपास नजरें घुमाई तो चारों तरफ से उन आदमियों ने उसको घेरा हुआ था और बीच में विहान खड़ा था। आरवी ने किसी तरह उस आदमी से खुद को छुड़ाया और दूसरी तरफ भागने को हुई कि दूसरे आदमी ने उसको दबोच लिया और उसकी गर्दन को चूमने लगा। आरवी की आंखें छलछला उठी। उसने उसके मुंह को अपनी हथेली से पीछे धकेल दिया और जैसे ही भागने लगी, उस आदमी ने उसके दुपट्टे को पकड़कर खींच लिया। आरवी के आगे बढ़ते कदम ठिठक गए और हथेलियां सीने पर चली गईं। सर झुकाए हो सिसक पड़ी। सब आदमी उसकी बेबसी पर शैतानी हंसे हंसने लगे। विहान ने मौके का फायदा उठाया और उसको अपने करीब खींचकर उसके चेहरे और गर्दन को चूमने लगा। आरवी उसको खुद से दूर करने लगी। अमरजीत जी और सुभाष जी ने बेबसी से अपना चेहरा घुमा लिया। शान ने मुठ्ठियां कस ली और अपने हाथ खोलने की कोशिश तेज कर ली। अब तक सावित्री जी को भी होश आ गया था। अश्विन को वहां देखकर उनकी आंखों में डर समा गया था और वो आरवी की हालत देखकर तड़प उठी। शान से जब और बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने गुस्से में अपनी मुठ्ठियां कस ली और तेज आवाज में चीखा, मैं साइन करने को तैयार हूं, छोड़ दो उसे। अश्विन के लबों पर शैतानी मुस्कान फैल गई और विहान ने भी आरवी को छोड़ दिया। आरवी ने तुरंत अपना दुपट्टा उठाया और अपने ऊपरी बदन को ढक दिया। सहमी हुई सी वो शान को देखने लगी, जिसका चेहरा बुरी तरह जल रहा था। माथे और बाहों की नसें ऐसे उभर आई थी मानो किसी भी पल गुस्से में उसकी नसें फट जाएंगी। आंखें खूनी रंग में रंगी थी और डरावनी लग रही थी। अश्विन ने अपने आदमियों को कुछ इशारा किया तो उन्होंने शान के हाथ खोल दिए पर उसको पकड़ लिया। शान ने मन ही मन कार्तिक को कोसा और जैसे ही पेपर्स पर साइन करने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, वहां पुलिस के सायरन की आवाज गूंज उठी, जिससे सब घबरा गए, जबकि शान के लबों पर रहस्यमयी मुस्कान फैल गई। उसने तुरंत एक पंच सीधे अश्विन की नाक पर मारा और उसकी नाक से खून का फवारा फूट पड़ा। इतने में अर्जुन और कार्तिक अपने आदमियों के साथ वहां पहुंच गए और देखते ही देखते वहां का नजारा बदल गया। अमरजीत जी और सुभाष जी को खोल दिया गया और वो भी शान के साथ अश्विन को मारने लगे। अर्जुन ने अब प्रवीण को धर दबोचा, क्योंकि सब किया धरा उसी का था। उसकी वजह से दोनों दोस्तों के बीच गलतफहमी की दीवार पनपी, जिसे नफरत में बदल दिया गया। शान के आदमी अश्विन के आदमियों से भिड़ गए। अश्विन अधमरी हालत में जमीन पर पड़ा था। विहान ने बाजी पलटते देखा तो अपना फायदा सोचते हुए तुरंत आरवी की तरफ कदम बढ़ा दिया। उस तरफ अभी किसी का ध्यान ही नहीं था। अश्विन के साथ जिन जिन ने आरवी को छुआ था वो सब शान के गुस्से का शिकार बन चुके थे। उनके हाथ पैर टूट चुके थे
और लहूलुहान होकर शव जैसे जमीन पर पड़े थे। वहां होते शोर को सुनकर आरवी भी समझ गई कि यहाँ हो क्या रहा है। वो सावित्री जी के सीने से लगी सिसक रही थी, तभी अचानक वेहान वहां पहुंच गया। उसने आरवी की बाह पकड़कर उसको अपनी तरफ खींच लिया और सावित्री जी को दूसरी तरफ धक्का दे दिया, जिससे वो जमीन पर जा गिरी और उनका सर कुर्सी के कोने से टकरा गया, जिससे उनके सर से खून दिसने लगा। सर भी चकरा गया। आरवी ने चिल्लाकर सबका ध्यान अपनी तरफ करना चाहा, पर वेहान ने उसके मुंह को अपनी हथेली से कसके दबा दी और उसको कमर से दबोचे लगभग घसीटते हुए अपने साथ लेकर जाने लगा। आरवी छूटने को छटपटाती रही, पर उससे छूट ना सकी। चीखी चिल्लाई पर आवाज अंदर घुटकर रह गई। वेहान ने सबको बिजी देखकर पीछे के रास्ते से उसको लेकर जाना चाहा, ताकि कोई रुकावट ना आए रास्ते में। जैसे ही वो उस जगह से बाहर जाने लगा, आरवी की नजर वहां पड़े रॉड पर पड़ी। हिम्मत आई उसमें और उसकी पूरी जान लगाकर उसकी हथेली को दांतों तले दबा लिया। वेहान दर्द से बिलबिला उठा और आरवी पर उसकी पकड़ कमजोर पड़ गई। आरवी ने उसको खुद से दूर धक्का दिया और भागकर दूसरी तरफ आ गई। आरवी ने तुरंत रॉड उठा ली। वेहान संभल कर उसको पकड़ने आगे बढ़ा, पर आरवी ने रॉड उसके सर पर दे मारी और उसके सर से खून का फवारा फूट पड़ा। सर फट गया था। दर्द से उसकी आंखें बंद हो गईं और वो जमीन पर जा गिरा। आरवी अंदर की तरफ भागी, पर अचानक ही वेहान ने उसके पैर को पकड़ लिया, जिससे आरवी मुंह के बल जमीन पर जा गिरी और उसकी चीख निकल गई। शान, शांतनु। आरवी दर्द से तड़प उठी। देखते ही देखते उसकी बीली सलवार खूनी रंग में रंग गई, उसकी आंखें बंद हो गईं और दर्द इतना ज्यादा था कि बंद आंखों के कोरों से भी आंसू बह रहे थे। उसकी चीख ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा। उसके आसपास बिखरा खून देखकर कुछ पल को सब स्तब्ध रह गए, फिर तुरंत आरवी की तरफ दौड़े और सबसे आगे शान था। पीछे अश्विन अब हिम्मत करके उठकर खड़ा हो गया और उसने अपनी गिरी हुई कन उठाकर शान पर तान दी, जिसे अमरजीत जी ने देखा लिया और शान को पुकारते हुए वो उसकी तरफ दौड़ गए। शान को तो अभी बस आरवी दिख रही थी। वो दौड़ते हुए आरवी के पास पहुंचा और उसको अपनी बाहों को उठाना चाहा, पर वेहान ने अभी उसका पैर पकड़ा हुआ था। उसने लड़खड़ाती जुबान में कहा, अगर ये मेरी ना नहीं होगी तो किसी की नहीं होगी, मरेगी मेरे साथ।
शान का चेहरा एक बार फिर गुस्से से जल उठा। उसने पास पड़ी रॉड उठाई और गुस्से में विहान के शरीर पर रॉड बरसाने लगा। उसकी हड्डियों के टूटने के साथ उसकी दर्द भरी चीखें वहां गूंज उठीं, जो किसी का भी दिल दहला दे। शान का ये रूप देखकर सब स्तब्ध से जहां थे वहीं खड़े रह गए। इसी बीच गोली चलने की आवाज गूंजी तो सबका ध्यान उस ओर गया। अमरजीत जी के कदम लड़खड़ा गए थे, फिर भी उन्होंने अश्विन के सीने में 6 की 6 गोलियां दाग दी। शरीर पहले ही बेजान सा हो गया था। अगले ही पल वो जमीन पर जा गिरे। आंखें फटी की फटी रह गईं, पर सांसें थम चुकी थी उनकी। अमरजीत जी को भी 2 गोलियां लगी थी। अर्जुन तुरंत उनके तरफ दौड़ा और उन्हें संभाल लिया। दूसरी तरफ विहान की सांसें भी थम चुकी थीं और जैसा कि शान ने कहा था, उसकी मौत इतनी भयंकर थी कि देखने वाले की रूह तक कांप उठे। शान तुरंत आरवी को अपनी बाहों में उठाकर बाहर भागा। उसके पीछे कार्तिक भी दौड़ पड़ा। उसने ड्राइविंग सीट संभाली थी और शान आरवी को अपनी बाहों में उठाए पीछे जा बैठा। अगले ही पल गाड़ी तेज रफ्तार से शहर की तरफ बढ़ गई। आज गाड़ी हर सिग्नल तोड़ते हुए तेजी से आगे बढ़ रही थी। दूसरे गाड़ी में अर्जुन अमरजीत जी को लेकर पीछे बैठा था। सुभाष जी ड्राइव कर रहे थे और सावित्री जी उनके बगल में परेशान सी बैठी थीं। आज सालों बाद दोनों मिले थे, पर हालात ऐसे कि न मिलने की खुशी महसूस कर सकें और न ही एक दूसरे को सीने से लगाकर सालों से विरह की अग्नि में जलते तड़पते मन को 2 पल का सुकून ही दे सकें। 1 घंटे का रास्ता आधे घंटे में तय करके सब हॉस्पिटल पहुंच गए। अमरजीत जी और आरवी दोनों को ओटी में लेकर जाया गया। पुलिस भाग घटनास्थल पर पहुंच गई और न्यूज़ में हर तरह से ये खबर फैल गई। घर से अर्पिता जी और सुभाष जी भी हॉस्पिटल पहुंच गए। अंशु को छाया के पास छोड़ दिया गया। हालांकि वो भी आरवी को लेकर परेशान थी, पर अंशु का वहां जाना ठीक नहीं था। अनुपमा जी भी बदहवास सी वहां पहुंची। उनके साथ रश्मि भी थी। रिहान भी वहां आ चुका था। सब शान से बात छुपाने की वजह से कुछ नाराज थे, पर परिस्थितियां ऐसी थीं कि कुछ कह न सके। शान बेचैन सा आरवी के ओटी के बाहर चक्कर काट रहा था, तो अर्जुन भी अमरजीत जी के लिए बहुत परेशान था। बाकी सब भी दोनों के लिए भगवान से प्रार्थना कर रहे थे। कुछ देर बाद आरवी के ओटी का दरवाजा खुला और परेशान सी डॉक्टर बाहर आई। सब उनके तरफ बढ़ गए। शान ने उन्हें देखा और व्याकुलता से बोल पड़ा, डॉक्टर आरवी ठीक है ना? उसका इतना खून कैसे निकला? कोई गहरी चोट तो नहीं लगी उसे? सब ठीक है ना? टू बी कंटिन्यूड। थोड़ा सब्र और रखिए, बस अब कुछ भागों के बाद कहानी बेहद इंटरेस्टिंग मोड़ लेने वाली है, जहां आपको शान का एक अलग रूप देखने को मिलेगा।